दो दिन पहले मैंने दीक्षा का मतलब क्या है ये, उसका जो तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, इस पर हमने दो दिन चर्चा की। दुर्भाग्यवश समय की पाबंदी के कारण प्रश्न उत्तर नहीं हो पाया, तो प्रवचन के बाद एक भक्त ने कहा कि मेरा एक प्रश्न था, मैं पूछ नहीं पाया, अभी मैं पूछूं क्या? मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, अगर किसी का दीक्षा नहीं हुआ तो क्या वो भगवत धाम नहीं जा सकता? लोगों के अंदर ये प्रश्न है कि अगर दीक्षा नहीं हुआ तो क्या भगवत धाम में प्रवेश नहीं है हमारे लिए? कुछ समय पहले हमारे एक अच्छे भक्त गुजर गए हमारे बीच से, श्री नितिन चुड़ेकर प्रभु। तो उस समय भी भक्त लोग कह रहे थे, अरे उनका दीक्षा नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा था, उनकी इच्छा थी। आज उनकी पुत्री जो है नेहा, प्रफुल्ल मुखी माता जी आई नहीं है उनका, उनके उनकी बच्ची का नामकरण कार्यक्रम है। तो कभी कभी लोगों के मन में धारणा आती है, अरे वो गुजर गए। कभी भक्तों के माँ बाप जो हैं, कभी सोचते हैं, अरे किसी ना किसी तरह से उनका दीक्षा हो जाता अच्छा होता। लोगों की धारणा ऐसी हो कि वो दीक्षा वो एक ऐसा एक रिजर्वेशन टिकट है जिसके द्वारा भगवत धाम जाना गारंटी है, और नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं मिला। तो ये उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा इसका उत्तर चैतन्य चरितामृत में है, आज मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूं उसका उत्तर। ये श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 15वां अध्याय 108वां श्लोक, याद रहेगा आपको, श्लोक क्रमांक 108। तो ये भी हम लोग उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात में तात्पर्य है 4.5 पन्ने का। हरे कृष्ण, क्या हो रहा है? हरे कृष्ण। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। इसका अनुवाद ऐसा है, मनुष्य को न तो दीक्षा लेनी होती है, न दीक्षा के पूर्व आवश्यक कृत्य करने होते हैं, उसे केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। आप सबको सुन के बहुत आनंद हुआ होगा। पर इससे पहले थोड़ा प्रसंग क्या है मैं बता देता हूं। ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं, उनके मुख से आया हुआ श्लोक है। प्रसंग ऐसा है, बंगाल और अलग अलग जगह के भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद, जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो 4 महीने के लिए भक्तगण उनसे मिलने आया करते थे रथ यात्रा के दौरान। उस समय चतुर्मास, और जैसे आते थे सब लोग आकर सबसे पहले महाप्रभु से मिलते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन से पहले भी। और 4 महीने के बाद जब जाना पड़ता था वापस, तब भी जाके महाप्रभु से मिलते थे। और भक्तों का मिलना ऐसा था मानो सारी ओर से अलग अलग नदियां आकर समुद्र में मिल रही हो, इस तरह से महाप्रभु से आके मिलते थे। महाप्रभु के आशीर्वाद प्राप्त करते थे, महाप्रभु उनका गुणगान किया करते थे, हर एक भक्त का प्रशंसा किया करते थे। कभी कभी कुछ भक्त महाप्रभु से प्रश्न किया करते थे, उन प्रश्नों का महाप्रभु उत्तर दिया करते थे, और तत्पश्चात सबको विदा देते थे। तो एक प्रसंग, एक बार चतुर्मास हो गया, अब भक्तों का वापस जाने का समय आ गया, महाप्रभु ने कहा आप जाओ, 8 महीना आप अपना दूसरी जिम्मेदारी संभालो। तो ये वही प्रसंग है। कुलीन ग्रामे र कहे सम्मान करिया, प्रत्यब्द आसिबे जात्राए पट्टदोरी लैया। इसके बाद महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के सारे वासियों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया कि वे प्रतिवर्ष आए और रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ को खींचे जाने के लिए रेशमी डोरी लाएं। ये कुलीन ग्राम के वासियों का सेवा था। ये देखिए, महाप्रभु सबको सेवा में लगाते थे, और जो भी सेवा महाप्रभु के मुख से उनको मिलता था उसको अपना जीवन का सर्वस्व मानकर शिरोद्धार करके उस सेवा में लगा करते थे। कोई सेवा बड़ी नहीं, कोई सेवा छोटी नहीं थी। ऐसा क्या रस्सी लाना, वो भी हमको खींचने को मिलता नहीं है। कभी कभी भौतिक बुद्धि से देखने के कारण हम जो भगवान की जो सेवा है, एक छोटा सा निवेदन है सब भक्तों से। आज के एक मीटिंग में मुझे सजेशन दिया गया कि प्रभु जी आप प्रवचन करने से पहले 2 अनाउंसमेंट किया करो, एक सब भक्तों को आगे आके बैठने को बोलो, ताकि नहीं तो बीच बीच में कोई एक भक्त को ड्रामा बहुत करना पड़ता है और बहुत सारा ध्यान इधर उधर जाता है। तो कृपया सामने जो बैठे हैं 1 इंच जगह भी मत छोड़िएगा, दूसरे भक्तों के ऊपर कृपा कीजिएगा। और दूसरा था, हमारे प्रभु कहते हैं, सचिसुत प्रभु रेगुलरली कहा करते, बोले अपना मोबाइल हो सके तो बंद रखिए, नहीं तो कम से कम साइलेंट में रखिए, मैंने भी रखा है। और अगर बातचीत करना ही है, नहीं करे तो अच्छा है, करना ही है और बहुत जोर से उनको सुनने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है तो बाहर जाके कीजिएगा, चलेगा। क्या सामान्यतः ये तत्व ज्ञान जब चर्चा होती है तो बड़ा सूक्ष्म चीज है ये, थोड़े क्षण अगर ध्यान नहीं है तो फिर इधर उधर समझना बड़ा मुश्किल है। कम जितना डिस्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, इधर उधर मन हटने की संभावना है तो ना हो तो अच्छा है वो। तो इस तरह से महाप्रभु ने उनको एक छोटी सी सेवा दी कि जब भी आप जगन्नाथपुरी आओगे तो भगवान जगन्नाथ को खींचे जाने के लिए जो रेशमी डोरी है वो कृपया आप लाइए। और वो हर बार वो करते थे, वो अच्छे तरह से रेशमी डोरी बना कर, और ये कोई छोटी सी डोरी नहीं है, मोटी मोटी होती है, रथ को खींचना और बड़ा लंबा होता है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो ये सेवा वो लोग किया करते थे। गुणराज खान कैला श्री कृष्ण विजय ताहा एक वाक्य तार आछे प्रेममय। फिर महाप्रभु ने कहा, कुलीन ग्राम के श्री गुणराज खान ने श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ रचा है जिसमें लेखक के कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाला एक वाक्य है। गुणराज खान ने एक लेख लिखी थी, बहुत सुंदर एक सुंदर ग्रंथ लिखा है, और उसमें जो एक वाक्य है वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम से भरा हुआ है और वो मुझे जीत लिया है। कौन सा वाक्य है ये? नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ यही वाक्य बिकाइनु तार वंशे रहात। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण मेरे प्राण धन हैं, प्राणाधार हैं। मैं इसी वाक्य से गुणराज खान के उत्तराधिकारियों के हाथों बिक गया हूं। ये एक वाक्य, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, अच्छा वाक्य है, हम भी एक बार दोहराएंगे। नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। अपने हृदय से कहा था उन्होंने कि नंद नंदन कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं। बोले ये एक वाक्य न केवल वो बल्कि उस कुलीन ग्राम के सब लोगों के प्रति मेरा आभार बढ़ गया है। तोमार की कथा तोमार ग्रामेर कुकुर से मोर प्रिय अन्य जन बहु दूर। महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए तो मुझे कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारे गांव का रहने वाला कुत्ता भी मुझे अत्यंत प्रिय है, तो फिर अन्यों के बारे में क्या कहा जाए। श्रीवास ठाकुर के बारे में भी कहे थे, श्रीवास ठाकुर के संबंध में जो भी कोई व्यक्ति आया उस सब का मैं आभारी हूं, उस सब मुझको प्रिय है। सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद, एक नंबर का अपराधी, पर क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रिय था महाप्रभु ने उसे कृपा दी। भक्त इतने प्रिय, भक्त इतने प्रिय हैं भगवान को। तुम्हार की कथा तुम्हार ग्रामे रो कुकुर, तो अरे तुम तो दूर की बात, तुम्हारे गांव का एक कुत्ता भी मुझे अत्यंत प्रिय है। से मोरा प्रिय अन्य जन बहु दूर, लोगों की तो दूर की बात। तबे रामानंद आर सत्यराज खान प्रभुर चरणे किछु कैला निवेदन। और तब कुलीन ग्राम के ही दूसरे वासी रामानंद और रामानंद वसु और सत्यराज खान प्रभुर चरणे किछु कैला निवेदन, आए भगवान के चरणों में उन्होंने एक निवेदन किया, एक प्रश्न पूछा। और ये प्रश्न हर गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, खास गृहस्थों के लिए। गृहस्थ विषयामी किमोरा साधने श्रीमुखे आज्ञा करो प्रभु निवेदी चरणे। सत्यराज खान ने कहा, हे प्रभु, गृहस्थ तथा भौतिकतावादी व्यक्ति होने के कारण मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विधि नहीं जानता, इसलिए मैं अपने को आपके चरण कमल में समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आदेश दें, आप मुझे आदेश दें कि हम जैसे बद्ध गृहस्थ जो जीव हैं इनका किस तरह से उद्धार हो। हालांकि ये महान भक्त हैं, पर महानता का एक लक्षण है, जितना व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है उतना उसे लगता है कि मैं बहुत ही अधम। ये अजीब है आध्यात्मिक जीवन का अजीब एक तरीका। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अभी उनको बता रहे हैं, प्रभु को है ना कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। कृपया ये दोहराएंगे, ये चीजों को दोहराना है, बार बार दोहराना है, अपने हृदय में इसको लिखना है, हृदय में उतारना है, अपनाना है और बाद में लोगों को बांटना है। प्रभु को है ना कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा प्रभु को है ना कृष्ण सेवा वैष्णव सेवान निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। गृहस्थों के लिए तीन आज्ञा दिया उन्होंने, बोले ये तीन चीज करो काफी है। एक, प्रभु कहे ना कृष्ण सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करो और जब भी संभव हो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करो। प्रभु कहे ना कृष्ण सेवा, एक तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा, घर में सुंदर से भगवान श्री कृष्ण की सेवा जारी रहे। प्रभु कहे ना कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, और वैष्णवों की सेवा करो जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के को प्रिय हैं। प्रभु कहे ना कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जिसको कभी हम छोड़ नहीं, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। अब सत्यराज कान वो हमारे जैसे नहीं थे, सुन लिया क्या प्रभु? हां सुन लिया, समझ लिया, पूछ रहे हैं भी अगला प्रश्न। वो बोले ठीक है, कृष्ण सेवा समझ गया मैं, निरंतर नाम संकीर्तन समझ गया, पर ये वैष्णव सेवा, तो वैष्णव को कैसे पहचाने, कौन है वैष्णव? सत्यराज बोले वैष्णव चीनी बो के मने के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षणे। यह सुनकर सत्यराज ने कहा, मैं वैष्णव को कैसे पहचानूंगा, मुझे बताएं कि वैष्णव कौन होता है, उसके सामान्य लक्षण क्या है। भगवान उत्तर दे रहे, चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे रहे, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सवाकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी व्यक्ति कृष्ण नाम का एक बार भी उच्चारण करता है वह पूज्य है और सर्वोच्च मानव है। तो कोल्हापुर के आधे लोग तो वैष्णव है लगता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक बार कृष्ण नाम लेने से ही मनुष्य पूर्ण बनता है, ऐसा मनुष्य वैष्णव कहलाता है। ऐसी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कृष्ण भावनामृत जीवन का श्री गणेश किया जा सकता है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति इतनी श्रद्धा से नामोच्चार नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत से हो जाती है। कृष्णस्य गिरितम मनस कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण नाम तथा भगवान या ब्रह्म को अभिन्न समझे, कृष्ण नाम कृष्ण से और चिंतामणि से भी अभिन्न है। कृष्ण नाम नितांत दिव्य एवं भौतिक कल्मश से मुक्त ध्वनि का साकार रूप है। कृष्ण नाम तथा कृष्ण अभिन्न है, ऐसा समझना होगा। ऐसी श्रद्धा के साथ मनुष्य को नाम कीर्तन करते रहना होगा। नवदीक्षित पद पर रहते हुए उसे शुद्ध भक्त के भक्तिमय अवयवों का पता नहीं चल सकता, किंतु जब वह भक्ति में लगता है, विशेषतया अर्चा विग्रह पूजा करता है और गुरु आदेशानुसार चलता है, तो वह शुद्ध भक्त बन जाता है। शुद्ध भक्त से कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लाभ लेकर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। लंबा तात्पर्य है। और तो ये एक नाम जो है किस तरह से संपूर्ण ज्ञान के कि कृष्ण क्या है, ये नाम क्या है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, इस श्रद्धा से, इस भक्ति भाव से। दक्षिण भारत के एक महान संत हुए, उन्होंने कहा है एक राम नाम में इतनी शक्ति है कि राम कहने के लिए रा करके मुंह खोलो तो आपके हृदय में करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं सब चले जाते बाहर, और म करके मुंह बंद कर दो तो बाहर का कोई पाप फिर से अंदर नहीं आएगा। राम तो आप बोलेंगे प्रभु जी तो बहुत साल से ले रहे हैं हम लोग, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कितने बार लेते हैं हम लोग, 1726 बार तो लेते हैं हर रोज 16 माला करके। ये एक नाम का मतलब है एक बार बड़ी तीव्रता के साथ पूरा श्रद्धा के साथ ये जानते हुए कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम होते होय। कृष्ण नाम का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवों विधियों को पूरा कर सकता है, यानी नाम के बिना नवदा भक्ति अपूर्ण है। आप अर्चा विग्रह की सेवा करते हो पर उसके साथ साथ अगर नाम नहीं ले रहे हो तो फिर वो पूर्ण नहीं हुआ। और उस समय ये श्लोक कहते हैं, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे या चंडाला सबारे उद्धारे। मनुष्य को न तो दीक्षा लेनी होती है न दीक्षा के पूरे आवश्यक कृत्य करने होते हैं, उसे केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति चांडाल का भी उद्धार हो जाता है। तो आप कहेंगे महाराज ये फिर का है क्या, फिर इतना बड़ा बड़ा सेमिनार लिया आपने 2 दिन का, इतने हम लोग जोर क्यों देते हैं दीक्षा के ऊपर। चैतन्य अपना श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है उनका 64 अंग जो दिए हैं नवदा भक्ति का, उसका सबसे पहला 5 अनिवार्य है, आवश्यक है भक्ति में प्रगति करने के लिए। गुरु र सेवा दीक्षा गुरु याद नहीं आ रहा मुझे नहीं श्लोक तो मैं रखा था। हाँ, गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु र सेवान सद्धर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमन। 5 चीज अत्यावश्यक है, रूप गोस्वामी कहते हैं। गुरु पादाश्रय, एक सदगुरु को ढूंढना है। कल हमने परसों हमने चर्चा किया गुरु कर्णधारम, शरीर जो है मनुष्य जीवन में गुरु एक कर्णधार है, कप्तान है, उसके बिना भव सागर को पार नहीं कर सकते। गुरु पादाश्रय, सबसे पहले एक सदगुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। दूसरा, गुरु पादाश्रय दीक्षा लेना चाहिए। गुरु र सेवन, तीसरा गुरु का सेवा करना चाहिए। सद्धर्म शिक्षा पृच्छा, सद्धर्म शिक्षा ग्रहण करना चाहिए भगवान का, जो बारे में जैसे हमने कहा ये हमारे परंपरा शिक्षा का है। शिक्षा पृच्छा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति ये बहुवचन है, उपदेक्षति नहीं है। उपदेक्षन्ति इसका मतलब बहुवचन है, बहुत सारे गुरु हैं हमारे जीवन में। तत्वदर्शिनः वो भी बहुवचन है, तत्वदर्शी नहीं है। तो सद्धर्म शिक्षा पृच्छा, पूछना चाहिए, पूछकर समझना चाहिए, समझकर उतारना चाहिए। सद्धर्म शिक्षा पृच्छा और पांचवा साधु मार्गानुगमन। महाजनो ये न गतस्य पंथा, यानी सारे महाजनों के बारे में पढ़ना चाहिए, उन्होंने किस तरह से किस मार्ग पे चले, उनका अनुसरण करके चलना चाहिए। ये पांच चीज अत्यावश्यक है। महाप्रभु रूप गोस्वामी महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार बता रहे हैं। तो यहां ऐसा कैसे बना रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, जबकि शास्त्र में लिखा है कि अनिवार्य है। ये भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक श्लोक को हम ले लेते हैं और दूसरे सारे श्लोक छोड़ देते हैं हम लोग। इसको कहते हैं फैनेटिक। फैनेटिसिज्म मतलब क्या? अर्ध कुक्कुट न्याय, आधी मुर्गी का न्याय। एक मुर्गी है और मुर्गी को सामने से खिलाना पड़ता है, पीछे से अंडा देती है। तो हमको सामने का भाग अच्छा नहीं लगता, क्यों? खिलाना पड़ता है उसको, पीछे का अच्छा लगता है, रोज अंडा आता है नीचे से। तो क्या करते हैं, एक लालची आदमी था, उसने क्या किया, मुर्गी को आधा कर दिया। बोला आधा मैं रखूंगा, सिर्फ निकालते रहूंगा अंडा। आधा निकाला तो निकलेगा कैसे अंडा? तो जो हमको अच्छा लगता है वो एक श्लोक लेके दुनिया भर वही जगह बोल के दूसरे श्लोकों को नहीं समझेंगे तो फिर भी समस्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कभी कभी लोग हमको कहते हैं महाराज कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना चाहिए। अच्छा ठीक है, पर कर्मणो ही बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मण च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। इसका क्या, भगवान ने कहा कर्म ही बताता हूं, अकर्म बताता हूं, विकर्म बताता हूं। कर्म की गति समझना बड़ा मुश्किल है, कर्म बड़ा गूढ़ रहस्य गंभीर, उसका क्या? कर्मण्येवा, गधे भी कर्म करते हैं, गधे जैसा काम कर रहा और बोल रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरा भी नहीं बोलता है मां फलेषु कदाचन। तो जो चाहिए उतना ले लेना और उसको भी जोड़ दे देना और दूसरे सारे प्रभुपाद जी के एक पत्र का एक वाक्य लेकर एक अलग संस्था ही बना लिया लोगों ने। एक वाक्य हैंस फॉरवर्ड, एक शब्द, और उनके जितने सारे शिक्षाएं हैं प्रभुपाद जी के, इतने सारे पुस्तक, उसको छोड़कर एक चिट्ठी पे एक शब्द लिखे थे। आपसे अब के बार से जितना भी जो भी तुम लोग दीक्षा दोगे मेरे शिष्य हैं। कब तक? जब तक प्रभुपाद हैं उसके बाद तुम्हारे शिष्य हैं। उसका वो एक चीज लेकर उन्होंने एक नया सिद्धांत बना दिया। एक भक्त ने कहा पूरे हाथी को एक सुई के ऊपर बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है सुई के नोक के ऊपर एक हाथी को बैलेंस करना? एक चिट्ठी का एक शब्द। तो यहां एक श्लोक है जहां कहते कि दीक्षा की जरूरत नहीं है, पर रूप गोस्वामी कहते हैं प्रभुपाद जी ने स्थापित किया ये सब। हरिभक्ति विलास में बार बार कहते हैं सनातन गोस्वामी, भगवान गीता में कहते हैं सदगुरु का आश्रय लो। कैसे समझा जाए? इसीलिए इसका 4.5 पन्ने का तात्पर्य, वो मैं पढ़ने वाला हूं अभी, आपको तैयारी कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। सिद्धांत बोलिए अचित्य ना करो आलस, यह हुई ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अभी सिद्धांत की बात बता रहे हैं। कभी कभी एक वाक्य लेकर घिमा घुमा फिरा के कुछ कैसा हम लोग पथ भ्रष्ट होने की संभावना है। तो यहां प्रभुपाद सुंदर से समझाते हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में दीक्षा की व्याख्या की है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्व कोविदैः। इसका मतलब है, जीव गोस्वामी ने दीक्षा की परिभाषा दी है, दीक्षा वह विधि है जिससे मनुष्य अपने दिव्य ज्ञान को जागृत कर सकता है और अपने सारे पाप कर्मों के फलों का क्षय कर सकता है। शास्त्रों के अध्ययन में पटु व्यक्ति इस विधि को दीक्षा नाम से जानता है। तो दो चीज, आध्यात्मिक ज्ञान, सुप्त ज्ञान की जागृति और सारे पाप कर्मों का नाश, ये जब शुरुआत होती है वो शुरुआत दीक्षा है। दीक्षा के विधानों की व्याख्या हरिभक्ति विलास तथा भक्ति संदर्भ में भी की गई है। एक श्लोक है, उसका अनुवाद ऐसा है, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, वह दीक्षा तथा जनेऊ के बिना वैदिक कर्मकांड में प्रवृत्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी मनुष्य दीक्षा तथा व्रतबंध संस्कार के बाद ही ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण के रूप में दीक्षित हुए बिना वह ठीक से नाम की पूजा नहीं कर सकता। पूरा उल्टा हो गया अभी तो, पूर्व पक्ष, या ऐसा फिर कैसा कहा गया है, कर ही नहीं सकता, नाम की पूजा ही नहीं कर सकता। वैष्णव नियमों के अनुसार मनुष्य को ब्राह्मण रूप में दीक्षित होना चाहिए। हरिभक्ति विलास में विष्णु यामल तथा निम्नलिखित उद्धरण दिया गया है, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य के सारे भक्ति कार्य व्यर्थ जाते हैं। जिस व्यक्ति का ठीक से दीक्षा नहीं हुई रहती वह पुनः पशु योनि को प्राप्त हो सकता है। हरिभक्ति विलास में आगे उद्धरण है, हर मनुष्य का धर्म है कि प्रामाणिक गुरु के शरण में जाए, मुझे अपना तन मन तथा बुद्धि देकर गुरु से वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए। भक्ति संदर्भ में तत्व सागर का निम्नलिखित उद्धरण मिलता है, जब कांसा समझते हैं, करतालीसी से बना हुआ है, जब कांसे को पारे से स्पर्श कराया जाता है तो वह रासायनिक क्रिया द्वारा सोने में बदल जाता है। यह आज तक हमको नहीं मालूम कैसा होता है, हमारे एक भक्त ने ट्राई किया, लॉकर के अंदर थोड़ा कांसा लाया, पारा लाया, मिक्स करके अगले दिन मंगल आरती से पहले खोल के देखा, कुछ नहीं हुआ था, वैसे का वैसे ही था, कांसे का कांसा, पारा का पारा। वो करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। पर वो विधान लोगों को मालूम था, वो भी एक तरीका होता है, दक्षता होनी चाहिए, पूर्ण पूर्ण से ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह जब मनुष्य समुचित नीति से दीक्षा प्राप्त करता है तो उसमें ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। अब दीक्षा पुरश्चर्या लिखा है ना उधर, पुरश्चर्या का मतलब क्या, पुरश्चर्या विधि की व्याख्या करते हुए हरिभक्ति विलास में अगस्त्य संहिता से निम्नलिखित श्लोक उद्धत किए गए हैं। पुरश्चर्या का मतलब क्या, दीक्षा से पहले तैयारी का कार्य, तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी क्या है, अगस्त्य संहिता में लिखा हुआ, अगस्त्य मुनि ने लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः यानी सुबह, मध्यान्ह तथा सायंकाल अर्चा विग्रह पूजन करे, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, तर्पण करे, अग्नि यज्ञ करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। ये पांचों कार्य पुरश्चर्या कहलाते हैं। गुरु से दीक्षा लेते समय मनुष्य को चाहिए कि पहले इन पुरश्चर्या कार्य को संपन्न करे। पुरह शब्द का अर्थ है पहले और चर्या का अर्थ है कार्य। पुरह मतलब पहले और चर्या मतलब कार्य। पुरश्चर्या मतलब दीक्षा जो विधान है उसके पहले किया हुआ जाने वाला कार्य। इन कार्यों के आवश्यक होने के कारण ही हम कृष्ण भावनामृत अंतर्राष्ट्रीय संघ में शिष्यों को तुरंत दीक्षित नहीं करते। दीक्षा के पूर्व 6 मास तक एक शिष्य को पहले आरती तथा शास्त्रों की कक्षाओं में सम्मिलित होना होता है, विधानों का पालन करना होता है और अन्य भक्तों की संगति करनी होती है। जब वह पुरश्चर्या विधि में अग्रसर हो जाता है तो स्थानीय मंदिर अध्यक्ष दीक्षा के लिए संस्तुति करता है। रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं है कि आवश्यकताओं को पूरा किए बिना किसी को दीक्षित किया जा सके। जब हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जाप करके नियमों का पालन करके तथा कक्षाओं में उपस्थित रह कर आगे बढ़ जाता है तो अगले 6 महीने में उसका यज्ञोपवीत किया जाता है। 6 महीने में दीक्षा और दूसरे 6 महीने में ब्राह्मण दीक्षा। आजकल थोड़ा कड़क हो गया और थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हरिभक्ति विलास में कहा गया है पुरश्चर्या विधि के बिना इस मंत्र का सैकड़ों वर्ष तक कीर्तन करने पर भी मनुष्य पूर्ण नहीं बन सकता। केवल दीक्षा नहीं, पुरश्चर्या मतलब उसकी तैयारी, दीक्षा की पहले की जो तैयारी है। पुरश्चर्या विधि के बिना इस मंत्र का सैकड़ों वर्षों तक कीर्तन करने पर भी मनुष्य पूर्ण नहीं बन सकता, किंतु जिसने पुरश्चर्या विधि का पालन किया है उसे सरलता से सफलता प्राप्त हो सकती है। अपनी दीक्षा की पूर्णता चाहने वाले को चाहिए कि पहले वह पुरश्चर्या करे। पुरश्चर्या विधि वह जीवनी शक्ति है जिससे मंत्रोच्चार में सफलता प्राप्त होती है। इस जीवनी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह पुरश्चर्या विधि की जीवनी शक्ति के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। मतलब दीक्षा लेने से पहले एक तैयारी होनी चाहिए। क्या 6 महीना ही क्यों, 3 महीना क्यों नहीं, 10 महीना क्यों नहीं? महत्वपूर्ण बात है एक तैयारी और आशीर्वाद वैष्णवों का। उसके बिना एक अनुकूल भावना, एटीट्यूड, सेवा भाव, अनुकूल सेवा भाव के बिना जबरदस्ती से हम किसी ना किसी तरह से ले भी लिए दीक्षा तो सैकड़ों सालों तक भी जप करते रहेंगे, मंत्र उच्चार की सिद्धि नहीं मिलेगी, प्राप्त होगी। आपको दीक्षा मिलेगा, हमें दीक्षा मिलेगा पर सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो यह तैयारी करना बहुत जरूरी है। श्रील जीव गोस्वामी में भक्ति संदर्भ में बतलाया है, रामार्चन चंद्रिका में कहा गया है, विनैव दीक्षा विप्रेंद्र पुरश्चर्या विनैव ही विनैव न्यास विधिना जपमात्रेण सिद्धिदा। अरे रे देखिए अभी पूरा पलटी खा गया। अभी क्या कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इतना प्रबल होता है कि यह दीक्षा पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई दीक्षित है और पंचरात्र विधि अर्चा विग्रह पूजा में लगा रहता है तो शीघ्र ही उसका कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है और उसकी भौतिक जगत से पहचान तुरंत समाप्त हो जाती है। जो जितना ही भौतिक पहचान से मुक्त हुआ रहता है वह उतना ही अनुभव करता है कि आत्मा परमात्मा जैसा है। ऐसे समय में जब मनुष्य परम पद को प्राप्त हुआ रहता है तो वह समझ सकता है कि भगवान नाम तथा भगवान अभिन्न है। अनुभूति का इस अवस्था पर भगवान नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र की पहचान किसी भौतिक ध्वनि से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक ध्वनि मानता है उसका पतन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान नाम को भगवान मानकर उसकी पूजा तथा कीर्तन करें। अतएव उसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सम्यक रीति से दीक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि भगवान नाम कीर्तन बद्ध या मुक्त जीवों के लिए समान रूप से उत्तम है, किंतु बद्ध जीवों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है, क्योंकि कीर्तन करके मुक्त हुआ जा सकता है। जब नाम कीर्तन करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम वापस जाकर पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण र चरण। केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से मनुष्य को संसार से मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से वह भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर सकता है। अंत में एक पैराग्राफ है, ये पढ़ के हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का कि महाराज अभी बताओ इसके अभी निष्कर्ष में क्या है, दीक्षा लेना है कि नहीं लेने का है। अब ये भी बोलते हो, दो सेकंड के बाद वो भी बोलते हो, अभी कोई एक चीज बोलो ना। भगवान नाम का निरपराध कीर्तन दीक्षा क्रिया पर आश्रित नहीं है। भगवान नाम का निरपराध कीर्तन दीक्षा क्रिया पर आश्रित नहीं है। यद्यपि दीक्षा पुनश्चर्या का पुरश्चरण पर यद्यपि दीक्षा पुरश्चर्या तथा पुरश्चरण पर आश्रित है, लेकिन भगवान नाम कीर्तन पुरश्चर्या विधि पर निर्भर नहीं करता। यदि निरपराध भाव से कोई एक बार भी भगवान नाम लेता है तो उसे सारी सफलता प्राप्त होती है। भगवान नाम कीर्तन करते समय जीभ को चलते रहना चाहिए। नाम कीर्तन करने से ही मनुष्य का तुरंत उद्धार हो जाता है। सेवोन मुखे ही जिह्वा दो, जब जीभ सेवोन्मुख जिह्वा होती है अर्थात सेवा में नियंत्रित होती है, जिसकी जीभ भौतिक वस्तु, ये बड़ा ध्यान से सुनिए, जिसकी जीभ भौतिक वस्तुओं के आस्वादन तथा उसके विषय में बातें करने में लगी रहती है, वह अपनी जीभ का उपयोग परम अनुभूति के लिए नहीं कर सकता। सुबह सुबह 5 से 7 बजे उस जीभ के ऊपर हरिनाम और 7 के बाद रात को 9 बजे तक वैष्णव के प्रति निंदा, भौतिक बातचीत पर प्रजल्प के ऊपर चर्चा, एक ही जीभ से तो कैसा हो गया, हाथी ने स्नान किया मिट्टी में लुढ़का, हाथी ने स्नान किया मिट्टी में जाके लुढ़का, न कैसे होगा फिर उद्धार कैसे होगा। हरिनाम के अंदर शक्ति है, हरिनाम में इतनी शक्ति है कि आपको भगवत धाम ले जा सकता है, पर हरिनाम कैसे लेना है, हरिनाम क्या है, निरपराध भाव से कैसा लेना है, अपराध क्या होते हैं, इससे मुक्त कैसा होना है, ये जानने के लिए कोई मदद चाहिए, एक जानने के लिए तैयारी भी चाहिए। इसके लिए हमें एक सद्गुरु की जरूरी है। सद्गुरु सिर्फ लेना नहीं, सद्गुरु से प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, नम्रतापूर्वक स्वीकार करके, मैं मूर्ख हूं सनातन गोस्वामी जैसा, के आमी केने आमाय जारेता पत्र है, ग्राम्य व्यवहारे पंडित, मुझे लोग पंडित कहते हैं पर मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। नम्रता, उसके बाद पूछना, शिक्षा ग्रहण करना और प्रामाणिकता से अपनी पूरी शक्ति के साथ उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास। ये प्रयास देखकर भगवान वो अनर्थों को निकालेंगे, उस अपराधों को हमारे हृदय से निकालेंगे। हमारा प्रयास, हमारे शुद्ध, हमारे हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कैसा है, उस चिड़िया के समान है जो समुद्र को खाली करने निकली थी। क्या कोई चिड़िया समुद्र को खाली कर सकती है, कभी नहीं। इस तरह से हमारा प्रयास से, हमारे खुद के प्रयास से अगर हम बिना कृपा के, बिना भगवान की कृपा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, उनकी कृपा के बिना अगर इस समुद्र जैसे अनर्थों को निकालना चाहेंगे तो नामुमकिन है। पर जब प्रामाणिकता से, नम्रता से प्रयास करेंगे तो प्रयास को देखकर संतुष्ट होकर भगवान सदगुरु के द्वारा अगर कृपा करें हमें, तो उनकी कृपा से शक्ति बुद्धि हीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुमार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राणा ना राखी बोआर। तो हां सही बात है, कृष्ण नाम में शक्ति है भगवत धाम ले जाने की, पर वो कृष्ण नाम लेने की पात्रता, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज मायापुर में एक प्रवचन दे रहे थे, बोले कृष्ण भक्ति कैसी है, हरिनाम कितना शक्तिशाली है, बोले शेरनी का दूध जैसा है। किसी ने पिया शेरनी का दूध, हाथ उठाइए। और ऐसा नहीं कि वो मार्केट में जाके खरीद के लाए, खुद निकाल के, किसी की हिम्मत है, निकाल भी लिया उसको एक पात्र में रखना पड़ता है, आप स्टील में रखोगे तो उसको छेद करके निकल जाएगा, वो इतना एसिड जैसा होता है, इतना कड़क होता है वो, इतना तीव्र होता है वो, कोई भी पात्र में रखो उसको उसमें छेद करके निकल जाएगा, उसको एक ही पात्र चलता है, सोने का पात्र। जैसा आचार को हम लोग इसमें नहीं रखते, क्या बोलते हैं, पीतल नहीं, कॉपर, तांबे में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आचार जो है तुम्हारा अंतिम संस्कार करा देगा, वो जहर बन जाता है। तो हर एक एक पात्र होता है, तो इस शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए। इसी तरह से हरिनाम शुद्ध है, कर सकता है, आज ही भगवत धाम पहुंचा सकता है, एक नाम, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, कर सकता है, पर किस हृदय में, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, ये तैयारी है। जिस दिन सोने का पात्र बन जाएगा, सोना जैसा हृदय बन जाएगा, तृणादपि सुनीचेन, अनर्थ से सारे गंदगियों से मुक्त होकर सोने जैसा हृदय बन जाएगा, उस दिन एक भी कृष्ण नाम जब हम लेंगे, गौरांगा बोलिते होबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने वो बेनी। क्यों? क्योंकि आप जानेंगे कृष्ण का नाम से डायरेक्टली कृष्ण हमारे जीवा के ऊपर नाच रहे हैं। क्या कृपा है कृष्ण कि हमारे जीवा पे आकर नाच रहे हैं, अभी हम लोग वो नाच रहे हैं, हम सो रहे हैं, जब वो नाचने आते तब हम सोने जाते हैं। जब माला हाथ में लिया तो फर्स्ट क्लास नींद आता है, अनर्थों के कारण रुचि नहीं है। सात कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पित्त उपतप्त रसनस्य न रोचिकान। तो कैसे साफ करना है इस हृदय को, सोने का पात्र कैसे बनाना है, ये पात्रता कैसे लाना है, एक नम्रता से प्राप्त किया हुआ तरीका है। ये अपने कौन है, द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य, एकलव्य जैसा नहीं, बाहर के दुनिया में लोग क्या कहते हैं, गुरु भक्ति हो तो एकलव्य जैसा, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं वो गुरु द्रोही था, वो एकलव्य गुरु द्रोही था, चैलेंज लिया उसने, द्रोणाचार्य बोले मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, मैं लेके रहूंगा, जबरदस्ती गुरु का मूर्ति बनाया, पूजा किया, प्राप्त किया वो ऐसी कला, एक कुत्ता मुंह खोलने से पहले कुत्ते के मुंह के अंदर इतना बाण मार दिया, द्रोणाचार्य ने बोला वो जरा अंगुली काट दे मेरे को, दे दे। गुणगान करते हैं बाहर के दुनिया में, जो सदगुरु से श्रवण नहीं किए उसका गुणगान करते हैं, पर भक्तिदान सरस्वती ठाकुर उल्टा करते हैं, कहते हैं बोले अपने से मैं कैसा नहीं देता, मैं देखूंगा, मैं देकर लेकर रहूंगा। सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए, प्रणिपाते न बाद में परिप्रश्न, प्रश्न पूछने से पहले नम्रता होनी चाहिए, योग्यता नहीं है मेरे पास, नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कूपे पड़ी गुणायन जन्म आपना रहित अहित किछु न जानी ग्राम। सनातन गोस्वामी एक आदर्श संबंध गुरु हैं, वो अपने उदाहरण से दिखाते हैं किस तरह से गुरु के पास जाना चाहिए। ये भावना से जाएंगे तब स्वीकार कर पाएंगे। और अगर ये भावना है और किसी कारणवश दीक्षा नहीं हुई बाय चांस और उससे पहले शरीर छूट गया, तो क्या भगवान इतने क्रूर हैं कि बोलेंगे दीक्षा नहीं लिया क्या, लाइसेंस नहीं है, चलो बाहर निकल। अरे पूतना का दीक्षा हुआ था क्या, गुरु कौन थे पूतना के, पूतना का दीक्षा नाम क्या था, पूतना देवीदासी। पूतना जैसे व्यक्ति को भगवान ने भगवत धाम भेज दिया दीक्षा के बिना, तो क्या एक प्रामाणिक भक्त किसी कारणवश नहीं हुआ तो नहीं जाएगा ऊपर। गजेंद्र, भागवत प्रमाण है, गजेंद्र को जिस दिन उसने भगवान आकर उस मगरमच्छ को मारे, उसी दिन भगवान ने गरुड़ के साथ उसको बैठाकर वापस ले गए, स्वरूप मुक्ति दिए उसको। तो गजेंद्र को दे, गजेंद्र का दीक्षा हुआ था क्या, गजेंद्र दास, क्यों, उसकी तैयारी थी। कैसी तैयारी, गजेंद्र कौन था, पिछले जन्म में पांड्य देश में एक राजा था इंद्रद्युम्न महाराज, पांड्य देश का राजा, और वो भक्ति की मतलब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा चुका था। वो संपूर्ण राज्य को त्याग कर जीवन के अंत में जंगल में जाकर ध्यान करते हुए बैठा था, पूर्ण रूप से मग्न था वो भगवान के नाम स्मरण में। उस समय अंगिर मुनि का वहां आना हुआ, अंगिर मुनि उसके आश्रम में आए, उसके जहां बैठा था वहां आए, और अंगिर मुनि ने देखा कि इसको बेसिक सदाचार नहीं आता, ऋषि मुनि घर में आए हैं और ये उठकर उनको न एक चटाई दे रहा है, न थोड़ा पानी पिला रहा है, न एक अच्छे शब्द कह रहा है, एक बेसिक सदाचार, अतिथि सेवा इतना भी नहीं आता। अतिथि सेवा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, हम भी करते हैं, यहां पता नहीं बीच बीच में बंद हो जाता है फिर से शुरू करना पड़ता है। पर जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आया है, इसका मतलब प्रभुपाद ने या कृष्ण ने, निताय गौरचंद्र ने अंदर से उसे प्रेरणा दी है चैत्य गुरु के रूप में, भटक भटक इधर सही जगह पे आ जा, इधर आ जा, अंदर घुस घुस, गेट है आंधा, हाँ अंदर देख दर्शन कर, किसी न किसी तरह से आया है, भगवान ने उसको प्रेरित किया है किसी के द्वारा या अंदर से, तो उनका अतिथि है वो। इस भावना से अगर उन्हें थोड़ा प्रेम दे, थोड़े प्रेम से वचन कहे, बहुत अच्छी सेवा है, महत्वपूर्ण सेवा है, छोटे अच्छे वचन, थोड़ा कहना, पानी, थोड़ा प्रसाद, तो ये नहीं कर पाया और अंगिर मुनि ने उसे शाप दिया, बोले तू एक स्तब मोटी चमड़ी जैसे प्राणी जैसा तू बैठा हुआ है, डंब एनिमल, पशु जैसा, तो मैं शाप देता हूं कि तू पशु बन जा, हाथी, मोटी चमड़ा, बड़ा दिमाग पर अंदर में कुछ नहीं, हाथी का दिमाग बहुत बड़ा, सिर बहुत बड़ा होता है, दिमाग कुछ नहीं अंदर में। आप बोलोगे कैसे महाराज, कैसा मालूम है आपको, आप देखोगे ये हाथी के ऊपर, एक भक्त बता रहे थे नेपाल में, मिथिला, बहुत साल पहले 40-50 साल पहले वहां गए थे, तो उन्होंने देखा उस समय ट्रैक्टर नहीं था, ट्रक नहीं था, तो बड़े बड़े लॉरी में ऐसा बड़े बड़े लकड़ियां होते हैं उसको हाथी के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते, तो छोटा सा 10 साल का नेपाली लड़का, पतला एकदम, इतना हाथ बस उसका, वो हाथी के गले में बैठा हुआ है, एक छड़ी लिया है, छोटा सा छड़ी, और हाथी को ऐसा करता है तो उस हाथी को, उस बच्चे को सिर्फ ऐसा पकड़ के कुचल के एक लात में घुसाया तो कचुमर बन सकता है वो, पर उसकी उतनी बुद्धि नहीं, वो डरता है लकड़ी से मार देगा लड़का है इस तरफ मोड़ कितना कम बुद्धि है मां पकड़ के, अगर आप होते तो ऐसा पकड़ के नीचे पटक के ऐसा मारते तो पता नहीं चलता कौन है वो, आदमी है कि क्या है, वो नहीं कर पाता, बुद्धि कम है उसकी। ऐसा पशु शाप देने पर क्या, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, इसमें इंद्रद्युम्न महाराज की कोई गलती थी? क्या गलती थी? अरे वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मग्न है, ध्यान है, उनको पता भी नहीं है लोग बाह्य क्या हो रहा है, उनको बाह्य नहीं है अभी, और एक धाड़ करके जोर से शाप लग गया और ऐसे देख रहे हो, कंप्लेंट कर सकते थे, ऐसा कैसा सोचा नहीं क्या तुमने, मेरा क्या अपराध है, भगवान की सेवा कर रहा हूं, तेरे को भी मैं शाप दे सकता हूं, राजा हूं, बुलाऊं पूरी सेना को, शाप देता है मुझको कौन हूं मालूम है, मैं किस स्तर पर हूं मालूम है तुझे, बोल सकता है ना, बोल सकता है कि नहीं? तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हरिद्वाग वपुर्भिर् विदधा नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सद्दाय भाक। इस व्यवहार से उन्होंने भगवत धाम का रास्ता सीधा कर दिया। तत्तेनुकंपम, प्रभु मैं आपकी कृपा का याचना कर रहा हूं हर स्थिति में, भुंजान एव आत्मकृतम, मेरी कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद भी ऐसा मेरे प्रति व्यवहार हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत सांप जैसे क्या नम्रता, तू नम्र है, मुझे सिखाता है नम्रता, तृणादपि सुनिश्चिन, वाह मैं कितना तृण जैसा मालूम है, कह सकते थे इंद्रदुम्न महाराज, बोले नहीं, परीक्षित महाराज सेम चेतना, अम्बरीश महाराज सेम चेतना, उल्टे सीधे दुर्वास मुनि आके कुछ भी बोलते रहे कोई दोष नहीं, परीक्षित महाराज किस तरह से उन्होंने स्वीकार किया, एक छोटी सी तथाकथित गले में ला दिया, सही बात है, इतना बड़ा आदमी आया और कुछ नहीं करता, और उसके लिए इतना बड़ा शाप, भुंजान एव आत्मकृतम, यार इससे भी ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, ये तो सैंपल है, भगवान धन्यवाद आप तैयार कर रहे हो मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हजार बार मुझे अगर लोग इल्जाम भी लगाए मैं इसका सही है मेरे लिए, शायद करोड़ों जन्मों तक मैंने हजारों लोगों पर ऐसा इल्जाम लगाया होगा, धन्यवाद, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद वाक वपुर्भिर् विदधान नमस्ते, धन्यवाद, जीवे तयो, ऐसे जीवन जो जीता है मुक्ति पदे सदाय भाक, दाय भाक मतलब हकदार है वो, हकदार है वो मुक्ति पदे, आप बोलेंगे मुक्ति नहीं हमको भक्ति चाहिए, जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये मुक्ति का नाम यही श्लोक बोला तो महाप्रभु ने उनको बदल ही दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुक्ति पदे अच्छा नहीं लगता मेरे को, भक्ति पदे सदाय भाक, महाप्रभु बोले शास्त्र बदलो मत, ये मुक्ति का मतलब है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति, भागवत के अनुसार सही मुक्ति है शुद्ध भक्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, जब ये चेतना हो जाएगी तब जब हम कृष्ण नाम लेंगे तब वो नाम चाहे दीक्षा हुआ या नहीं हुआ हो हमें भगवत धाम ले जाने की क्षमता उसके अंदर है, कृष्ण नाम में वो शक्ति है, क्योंकि कृष्ण जो है स्वराट हैं, उनको कोई बाधा नहीं बोल सकता, प्रभु जी उसको मत लो, हाँ उसको दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा हुआ है, ये देखो लाइसेंस है। भगवान नियम बनाया है पर वो नियम से बद्ध नहीं है, स्वराट है वो, जो पूतना को दे सकते हैं। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम चिघांसया अपायद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोर्यद कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। शरण जाना, भगवान की शरण जाना, ये एक्चुअली क्रिया है और ये जाना हमें सिखाते भगवान गुरु। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्य। तो शरण जाने का विधान जो है सद्गुरु हमें सिखाते हैं और इसको अगर हम स्वीकार करेंगे तब निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सफल होगा, निश्चित रूप से उसका उसकी गति जो है ऊर्ध्व, निश्चित रूप से। और नहीं तो फिर लाभ नहीं हमारे लिए, कुछ पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हरिनाम के अंदर शक्ति है पर हम उसका पूरा लाभ ले नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सुंदर से यहां बताया गया है किस तरह से सचमुच में दीक्षा का स्पिरिट, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, क्या भावना होनी चाहिए, सेवा भाव किस तरह से होनी चाहिए। और यह मानसिक स्थिति है तो फिर हम निश्चित रूप से हरिनाम का लाभ सीखते हैं। प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवान निरंतर कहो कृष्ण नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री निताय गौर चंद्र की निताय गौर प्रेमानंदी।